तो नारद ने कहा कि इस कुंतलपुर में चंद्रहास 300 साल से राज्य कर रहे हैं और उनके विषया से चंद्रहास की दो पत्नियां हैं विषया और चंपक मालिनी। तो विषया से चंद्रहास को मकरध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत बलवान था और अपने पिताजी की तरह महान वैष्णव था, क्योंकि ये वरदान चंडिका ने उसको दिया था, याद है ना, पिछली बार की कथा सुनाई थी। और उसी प्रकार से चंपक मालिनी के गर्भ से पद्माक्ष नामक शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुआ। तो मकरध्वज और पद्माक्ष ये दो चंद्रहास के पुत्र हुए, बड़े दोनों ही बड़े शूरवीर। तो ये चंद्रहास का पूरा चरित्र हमने श्रवण किया। इसकी शुरुआत हुई थी, चंद्रहास इतना महान वैष्णव कैसे बना, ये प्रश्न होता है। तो उसका संग हुआ था शालग्राम शिला के साथ, वो खेल खेल में गुजारूनी खेल रहा, क्या बोलते हैं, अपने मित्र के साथ, सखाओं के साथ खेल रहा था। उस समय उसने वो जो शालग्राम शिला था उसको खेल खेल में मुंह में डाल दिया, उसको बचाने के लिए, उसको क्षति से बचाने के लिए। तो उसने ये सेवा कर दी थी अज्ञात से। तो शालग्राम शिला से उसकी भक्ति शुरू हुई थी। इसलिए नारद मुनि इस अवसर को लेकर शालग्राम शिला की महिमा को बताते हैं। शालग्राम शिला का विशेष महत्व है, ये देखने में तो पत्थर होता लेकिन विष्णु से अभिन्न है। शालग्राम शिला ही विष्णु। आजकल वैसे डुप्लीकेट शालग्राम शिला बहुत मिलते हैं, ओरिजिनल नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। जो भाग्यशाली होता है उसी के पास ओरिजिनल शालग्राम शिला पहुंचता है। नारद मुनि इसकी महिमा को समझाते हैं अर्जुन को, उसके माध्यम से हम लोगों को। तो इसको मैं यहां शब्दशः पढ़ता हूं, गौर से सुनिए, क्योंकि पूरी तरह से महिमा को मैं शब्दशः तो याद करके नहीं दोहरा सकता। तो नारद मुनि बताते हैं, महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार पूर्व काल में बालक चंद्रहास शालग्राम शिला के संग से इस भव सागर को पार कर गया था, इसलिए मनुष्य को नित्य शालग्राम शिला की अर्चना करनी चाहिए। हम लोग अर्चा विग्रह की अर्चना करते हैं, एक ही बात, लेकिन शालग्राम शिला का यह है कि इनको कहीं लेकर जाना बड़ा सरल होता है, छोटा सा शिला है तो कहीं भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं डब्बे में, जो उनकी सेवा करना सरल है। पांच कली काल में सर्वव्यापी जनार्दन शालग्राम शिला का तथा द्वारका में उत्पन्न हुए गोमती चक्र का कभी परित्याग नहीं करते, उनको भी बाहर निकालो ना, नहीं वो वापस घूमते रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। तो गोमती चक्र और शालग्राम शिला दोनों में जनार्दन का वास होता है। भगवान केशव समस्त लोगों के उपकार के लिए यति रूप से विराजमान रहते हैं, इसलिए सभी उपायों द्वारा सन्यासियों की पूजा करनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां कहते हैं कि भगवान केशव समस्त, आज सुबह ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था भागवतम के प्रवचन में, कि भगवान जो है समस्त लोगों के उपकार के लिए यति रूप में रहते हैं हमारे सन्यासी। अब ये सन्यासी जो यहां इंगित किया है वो मायावादी सन्यासी को इंगित नहीं किया, मायावादी भी सन्यासी होते हैं जो एक दंड धारण करते हैं, और दूसरे होते हैं वैष्णव सन्यासी जो त्रिदंडी सन्यासी कहलाते हैं। उनका जो दंड होता है उसमें दो गांठें होती हैं, जैसे तीन दंड को मिलाकर बना ऐसा दिखता है, इसलिए उसको त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। वो प्रतीक है भगवान, भगवान का भक्त और भक्ति की प्रक्रिया, इसलिए उसको श्रीदंडी कहते हैं। तीन चीज होती है। जबकि मायावादी क्या बोलता है कि मैं ही भगवान हूं, एक है, मैं और परमात्मा एक है, इसलिए वो एक दंड धारण करता है, जो बहुत बड़ा पाखंड है, कभी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता। तो यहां नारद मुनि जिस सन्यासी की बात करें वो त्रिदंडी सन्यासी की बात करें, यह समझने की बात इंप्लाइड ही, वो मायावादी एक दंडी सन्यासी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो छल कपट वाला है। तो जो त्रिदंडी सन्यासी होता है वो ऐसा जो श्रीहरि का भक्त है, श्रीहरि का दास है, ऐसे त्रिदंडी सन्यासी, वही वास्तविक सन्यासी। तो ऐसा सन्यासी श्रीहरि का प्रतिनिधि है, कृष्ण का प्रतिनिधि है, इसलिए उसको श्रीहरि के जितना ही सम्मान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि को भगवान जितना ही सम्मान नहीं देता है, तो हम आचार्य उपासना ठीक से नहीं कर रहे हैं। भागवत के 11वें स्कंध में भगवान उद्धव को आचार्य उपासना का महिमा समझाते हैं। भगवान कहता है कि जो मेरा प्रतिनिधि है उसको जैसे मेरी उपासना करते हैं वैसे ही उपासना करनी चाहिए, उसमें कोई क्षति नहीं, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, इसलिए जब गुरुदेव आते हैं, यहां खास करके भगवान सन्यासी को कहते हैं, तो ऐसे गुरुदेव जब आते हैं तो उनको साक्षात हरि के समान सम्मान करना चाहिए, वही भगवान खुद भी कह रहे हैं। तो अर्जुन उन देव देवेश्वर भगवान केशव के दो रूप हैं, एक चर और दूसरा अचर, भगवान के दो रूप बताए नारद मुनि। उनमें से सन्यासी को चर रूप कहा जाता है, चर माने जो चलता है, दो पैर पर चलता है। तो केशव का एक रूप है जो चर है, वो कौन है, जो उनका भक्त है, त्रिदंडी सन्यासी है, वो उनका चलने वाला रूप है, जो चलता है वो चर है। और जो चक्र चिन्हित शिला यानी कि गोमती चक्र है, वो उनका अचर रूप है, जो एक जगह पर स्थिर है। इसलिए द्वारका यदि जाए तो गोमती चक्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए, इसकी महिमा स्कंद पुराण में बताई गई है। महाबुद्ध, यदि तुम इस दुष्कर संसार सागर को सुगमता से पार करना चाहते हो तो भक्ति पूर्वक शालग्राम शिला की अर्चना करो। शालग्राम शिला की अर्चना का अधिकार सबको तो नहीं होता, जो ब्राह्मण दीक्षित होता है, यज्ञों को भी धारण करता है, उसी का उसका अधिकार होता है। इसलिए कलयुग में निश्चित रूप से दो प्रक्रिया का समन्वय किया गया है, एक तो अर्चा विग्रह की पूजा जो होती है उसको पंचरत्न की विधि कहते हैं, और वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है, सुगम होता है, सबके लिए वो नहीं होता है, जिसका जिसका अधिकार होता है वही कर सकता है। दूसरा है भागवत पद्धति, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं श्रवण कीर्तन, मैं कीर्तन कर रहा हूं श्रवण कर रहे हैं, ये भागवती पद्धति। श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में ये दोनों पद्धतियों का समन्वय दिया है। पंचरात्र की विधि से यहाँ राधा गिरिजादेव की सेवा होती, उनकी पूजा अर्चना होती, ये पंचरात्र की विधि। और भागवती विधि के अनुसार सुबह शाम यहाँ हरि कथा का श्रवण होता है, कीर्तन होता है, ये भागवती विधि। तो दोनों पद्धतियों का समन्वय दिया। तो शालग्राम शिला की पूजा अर्चना करना वो सबका अधिकार नहीं होता है, इसलिए वो सबके लिए इतना सुगम नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए सुगम क्या बनाया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र सभी के लिए सुगम है, सुलभ है, इसमें कोई अधिकार नहीं चाहिए। इसकी ब्यूटी देखिए आप, मतलब भगवान की जो कृपा है हरि नाम के रूप में, उसकी महिमा को पूरी तरह से गा नहीं सकते। किसी का भी कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी मनुष्य की मनुष्य योनि में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी काल में, किसी भी जगह पर, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो इस महामंत्र का जप कीर्तन कर सके और दूसरों को दे सके। ये ओपन है, सबके लिए सुलभ है, मतलब इसमें किसी प्रकार का किसी से अनुमति नहीं लेना, शालग्राम शिला की पूजा करने के लिए, आचार्य ग्रह की पूजा करने के लिए अधिकार चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का जप करने के लिए सबको सुलभ बना दिया, सबको अधिकार, क्या बोलते हैं उसको, जन्मजात अधिकार दे दिया। मनुष्य मात्र को जन्मजात अधिकार है कि इस महामंत्र का जप करें। और इस महामंत्र की विशेष महिमा है क्योंकि कली संकरण उपनिषद में खास करके ब्रह्मा जी बताते हैं कि कलयुग में ये महामंत्र ही सबके सबके तारण का मार्ग है। इति षोडशकम् नाम कलि कल्मष नाशनम् नाथ प्रतरपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। और सभी वेदों में इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता कि कलयुग के सभी कल्मष को नाश करता है। ये सभी के लिए सुगम है, सुलभ है, सभी का अधिकार इसके ऊपर। और भगवान जो है अपने नाम से अभिन्न है, इस बात को भली भांति समझो। नामनामकारी बहुदानी जो सर्वशक्ति सत्रा पिता नियमित स्मरणे न का, भगवान अपने नाम में सब प्रकार की शक्तियां भर दी और भगवान अपने नामों से अभिन्न है। इसलिए वैसे देखा जाए तो भगवान को पाना सरल है। आप जैसे ही अपने मुंह से श्रद्धा से इस महामंत्र का जप करते हो, उसको अपने कानों में डालते हो, तुरंत भगवान का संग हो गया। तुरंत एक क्षण में, जिस समय में हरे कृष्ण ऐसा बोला, उसी क्षण में भगवान से संग कर दिया, उसी क्षण। ये कलयुग की ब्यूटी है, इसलिए देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि इतना सुलभ है मार्ग, भक्ति मार्ग। फिर कहते हैं कि महिपाल, जो लोग विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालग्राम शिला तथा गोमती चक्र प्रदान करते हैं, उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं रह जाती। यहां दान दक्षिणा के बारे में बताया है कि ब्राह्मण को देना तो क्या देना चाहिए, आपको अनुदान इत्यादि ब्राह्मण को आवश्यकता होती है, लेकिन खास करके बताया कि शालग्राम शिला और गोमती चक्र उसको प्रदान करने से निश्चित रूप से देने वाले की मुक्ति हो जाती है। शालग्राम शिला का अर्चन, पूजन, ध्यान और भलीभांति स्तवन करने पर उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण पापियों का भी उद्धार कर लेते हैं। फिर धर्मात्माओं के लिए तो क्या कहना, पापी भी उसे उनका परित्राण हो जाता है। शालग्राम शिला का पूजन नैमिषारण्य, प्रयाग, गंगा सागर संगम और कुरुक्षेत्र की यात्रा से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। यदि करोड़ों जन्म में समुपार्जित महान पापों से युक्त मनुष्य शालग्राम शिला का पूजन करते हैं तो वे उस अर्चना के प्रभाव से उन पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो पापी व्यक्ति भी है, किसी भी तरह से अगर यदि अपने गुरु से शालग्राम शिला की पूजा का अधिकार पा लेता है तो उसने करोड़ों जन्म में जो पाप किया उससे मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो मनुष्य पूजन के जो शालग्राम शिला से उतरे हुए चंदन अथवा कुमकुम को नित्य अपने शरीर पर धारण करता है वह तो निस्संदेह मुक्त है, वह जीवन मुक्त है। जो मनुष्य पूजन के पश्चात शालग्राम शिला पर से उतरे हुए निर्माल्य, निर्माल्य माने जो भगवान को हम फूल ऑफर करते हैं और बाबा जब उसको उतार देते हैं उसको निर्माल्य कहते हैं। जो मनुष्य पूजन के पश्चात शालग्राम शिला पर से उतरे हुए निर्माल्य को अपने सिर पर धारण करता है उसे तो साक्षात हरि की तरह समझना चाहिए, जैसे हमने गुरु के बारे में बताया साक्षात हरि में समझ शांत, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। तो शालग्राम शिला की महिमा आई। फिर जो मनुष्य शालग्राम शिला को नैवेद्य यानी कि भात आदि अर्पित करके पीछे उस प्रसाद को स्वयं खाता है उसे उसके एक एक दाने से कपिला गौ के दान से उत्पन्न हुए फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। कपिला गौ बहुत दुर्लभ होती है, खास करके कोई व्यक्ति बहुत पापी होता है, गरुड़ पुराण ने इसका वर्णन किया, उसका कपिला गाय का कुछ वर्णन भी किया है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसकी पूंछ ऐसी होनी चाहिए, उसका शरीर का रंग ऐसा होना चाहिए, बहुत स्पेशल ब्रीड होती है। कलयुग में तो पता नहीं, आजकल मैंने देखी नहीं ऐसी गाय, पहले रहती होगी। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत पापी है और उसने ब्रह्म हत्या या गौ हत्या की है और मृत्यु से पूर्व उसको अपने पाप के बारे में साक्षात्कार हो जाता है, वो पहचान लेता है, समझ लेता है, तो उसको उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। तो ऐसी कपिला गौ ब्राह्मण को उसको दान देनी चाहिए, उसे उसको कलयुग जब नर्क में जाएगा तो जब बैतरणी नदी उसको पार करना पड़ेगा। बैतरणी नदी कैसी होती है पता है, उसमें बहुत सारा खून, पस, टूल, यूरिन, मज्जा इत्यादि रहता है, इतना घृणास्पद होता है, ऐसी जुगुप्सा होती है कि आप उसकी कल्पना मात्र से आपको बोलेगी अभी खाना खाओ तो आप खाना नहीं भाएगा, इतना भयंकर होती है वैतरणी नदी। तो नरक में ये नदी होती है, जो पापी मनुष्य होते हैं उसको यमदूत उसको उस नदी में पीटते हुए लेकर जाते हैं, उसको पार करना बड़ा कठिन होता है, और जो अंदर डूब गया तो वो तो पता नहीं कितने समय से भुगतेगा अंदर। इसलिए यदि किसी ने गौदान किया है तो वही गाय उसके सामने वैतरणी नदी में उपस्थित होती है और उसकी पूछ पकड़कर वो वैतरणी नदी को पार कर सकता है, ऐसा गरुड़ पुराण ने वर्णन किया है। ये ठीक है, ये दान इस प्रकार से ये सब विधियां शास्त्र में दी है, दूसरे युगों में इसका महत्व रहता था, अभी भी महत्व है, ऐसा अभी महत्व नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब विधियां सबके लिए बहुत कठिन है। आजकल तो पहले तो ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में वास्तविक ब्राह्मण मिलता है। क्या ब्राह्मण की व्याख्या क्या है? ब्रह्म जाना कि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो हमारे इस संघ में, इस संस्था में श्रीहरि के बारे में वर्णन किया जाता है, उनके तत्व के बारे में वर्णन किया जाता है, इसलिए उनकी कृपा से ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए, इसको हमें गौशाला भी है, तो ये बहुत महान कार्य, ये पुण्य कर्म से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि इस संस्था में दिया जाने वाला जो दान है, दक्षिणा है, वो सब श्रीहरि की सेवा में उपयोग होता है। दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक तो भौतिक पुण्य, किसी ब्राह्मण को, जरूरी नहीं है कि हर एक ब्राह्मण वैष्णव हो, क्योंकि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जो परब्रह्म है उनके तीन रूप है, ब्रह्मा ब्रह्म ज्योति, उनके शरीर से जो ज्योति निकलती है, कांति निकलती है, दैट इज ब्रह्म ज्योति, वो उसको ब्रह्म कहते हैं। दूसरे होते हैं परमात्मा, और तीसरे होते हैं जैसे गिरधर यहां खड़े। तो ब्राह्मण जो होता है केवल ब्रह्म का साक्षात्कार किया रहता है, ऐसा भी संभव। तो उसको गाय अगर हमने दान में दे दी, दक्षिणा में दे दी, तो डेफिनेटली उसका पुण्य है, और उससे भी अधिक फल मिलता है जब किसी वैष्णव ब्राह्मण को ऐसी गाय दान में दी, क्योंकि वो तो उस गाय का भगवान की सेवा में उपयोग करने वाला है। तो निश्चित रूप से उसको अज्ञावा सुकृति प्राप्त होती है, सुकृति ऐसी कि उसको भविष्य में श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति प्रदान करेगी। लेकिन फिर भी यदि वो सबके तो सबके लिए संभव नहीं होता, फल पात्र काल के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए, मृत्यु से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जो लोग पाप से नहीं डरते हैं, गरुड़ पुराण में और भागवतम में पांचवें स्कंध, भागवतम की पांचवें स्कंध में इसका विस्तार से वर्णन किया है परीक्षित और शिवनो गोस्वामी के बीच में वार्तालाप। तो पाप से डरना चाहिए, मूर्ख लोग पाप से नहीं डरते हैं। जो लोग अपना भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, अपने अगले जन्म की, लोग इसी जीवन की चिंता करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, फिक्स डिपोजिट रख लेते हैं, पेंशन आना चाहिए, एक्सेट्रा, सो मेनी प्लान, हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहते हैं लोग। तो शरीर के लिए कितना, सो मच फॉर दिस पेरिशेबल बॉडी, जो ऐसा शरीर जो नश्वर है उसके लिए कितनी चिंता, उसके लिए कितना अथाग प्रयास करते हैं लोग, है ना, करते हैं कि नहीं करते, मैं भी करता हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा। तो अपने अगले जन्म में हमारी क्या हालत होने वाली है उसका चिंतन, और उसकी चिंता आवश्यक पड़े तो चिंता भी करनी चाहिए। चिंता और चिंतन दोनों अलग अलग है, कहते हैं कि चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, सही बात, चिंता चिता के समान, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि मैंने इस जीवन में आत्मकल्याण के लिए प्रयास नहीं करना किया तो मुझे चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो चिंता से मैं प्रेरित होऊंगा कि मैं उसके लिए प्रयास करूं। इसके लिए मृत्यु से पहले यदि कोई व्यक्ति अपने इस जन्म में किए हुए पाप या अगले जन्म में किए हुए, पिछले जन्म में किए हुए पाप उसका प्रायश्चित नहीं करता है, तो निश्चित रूप से उसकी अधोगति होने वाली है। और कलयुग ऐसे बना है कि उसमें पल पल में पाप करते हैं, इसलिए प्रायश्चित की सब विधियां तो पालन करना संभव नहीं है। कलयुग में गरुड़ पुराण में और स्कंद पुराण में जो प्रायश्चित की विधियां बताई है, आप पढ़ोगे चक्कर खाकर गिर जाओगे, बोले ये तो कैसे संभव है जी, आपने आदमी जीना छोड़ दे वो बेटर है, इतना डिफिकल्ट है प्रायश्चित करना। तो चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि कलयुग में सब संभव नहीं है, इसलिए ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आप जितना पाप नहीं कर सकते हो उससे अधिक पापों को आपसे मुक्त कर देता है। भागवतम के छठे स्कंद में इसका वर्णन किया अजामिल की कथा में कि मनुष्य की कितनी शक्ति है पाप करने की। भगवान बोलते मैं देखता हूं कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, करो तुम करके दिखाओ, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पाप से मुक्त कर दूंगा। वो है हरि का नाम, लेकिन कब, जब मैं उस पापों को हरि नाम की महिमा समझने के बाद कॉन्शियसली नहीं करूं। पिछले पहले कर दिया था वो ठीक है, लेकिन नाम के बल पर मैं पाप नहीं कर सकता। यदि मैं नाम की महिमा समझ करके, नाम तो पापों से मुक्त कर देता है, उसके पश्चात मैं पाप करता रहता हूं और हरि का नाम देता रहता हूं, तो ऐसे काम नहीं करता हरि का नाम। यदि वो आदत से, कुछ आदत से कर रहा है और सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो कभी कभार पाप हो जाता है तो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, अभी चेत सुधरा भजता तो वो हरिनाम लेता रहेगा तो अंदर से मुक्त हो जाएगा, लेकिन कॉन्शियसली ऐसे करके वो नहीं कर सकता, तो उसकी अनुमति हो। इसलिए प्रायश्चित की कलयुग में सरल विधि है कि केवल इस महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम, इस महामंत्र का नियमित रूप से संख्यापूर्वक जप किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी वस्तु यदि हम संख्यापूर्वक नहीं करते हैं, नियम पूर्वक नहीं करते, तो उसमें डिसिप्लिन नहीं आता, माइंड हमारा डिसिप्लिन नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें कम से कम 16 माला जप करने की विधि दी है, ये संख्यापूर्वक इसको करना, ये करने से कोई भी प्रायश्चित अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती। इनफैक्ट हरि नाम में इतना बल है, हालांकि हम लोग उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, फिर भी हरि नाम में इतना बल है कि वो व्यक्ति को पुण्य भी प्रदान करते हैं। पाप तो उस पाप से तो मुक्त कर ही देता, लेकिन उसको पुण्य भी प्रदान कर देता है और इंद्र के समान बना देता है। लेकिन वैष्णवगण ऐसे स्वर्ग लोक इत्यादि की अभिलाषा नहीं रखते हैं। तो जो व्यक्ति पापी है कलयुग में, ये सरल मार्ग, सभी पापी है कलयुग में, इसलिए हम हरि केवल प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवद्धाम नहीं जाना चाहता, मतलब इतना गिरा हुआ है कि वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति को केवल नर्क में जाने से बचने के लिए हरिनाम का जप करना चाहिए। एटलीस्ट अधोगति से तो बचो, ऊर्ध्वगति होगी तुम्हारी हरिनाम के जप करने से, एटलीस्ट तुम नीचे नहीं जाओगे ऊपर जाओगे, या एटलीस्ट मनुष्य शरीर मिलेगा अगले जन्म में, कितने भी पाप किए हैं फिर भी, ये हरिनाम की महिमा। तो ये दूसरे युग में ये सब दान दक्षिणा का महत्व रहता था, कलयुग में भी है, लेकिन स्थल और फल काल पात्र के अनुसार करना है, लेकिन मुख्य धर्म है कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। जो मनुष्य शालक, हाँ ये हो गया कपिला गौ का महिमा बता दिया, जो लोग प्रतिदिन शालग्राम की शिला का स्पर्श करते हैं शुद्ध होकर शौच इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्होंने तो मानो देवता पितर और ब्राह्मणों की पूजा कर दी, अर्थात उन्हें इनके पूजन का फल प्राप्त हो जाता केवल स्पर्श मात्र। जो मनुष्य शालग्राम के समीप नित्य अथवा नैमितिक श्राद्ध भी करता है, श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, मेरे ब्राह्मण ने मुझे समझाया था, मेरे पिताजी का किया था, नित्य और नैमितिक श्राद्ध भी करता है शालग्राम के समीप, उसका वो श्राद्ध गया श्राद्ध के समान फलदायक हो जाता है। गया में श्राद्ध करना बहुत उसका विशेष महत्व है। तो कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर भी या पास के मंदिर में जाकर भी यदि शालग्राम शिला के समीप उसका श्राद्ध करता है तो गया के में किया हुआ श्राद्ध के समान माना जाता है। शालग्राम के समीप भक्तिपूर्वक महाभारत एवं हरिवंश की पुस्तक का पारायण पाठ पुत्र एवं धन प्रदान करने वाला होता है। कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, इस जन्म में किसी को संतान रहना वो प्रतीक है कि पिछले जन्म में बहुत घोर पाप किया, तभी कोई व्यक्ति नहीं संतान रहता। और आजकल के मूर्ख लोग ऐसे हैं जो संतान होते हैं फिर भी उसको मार डालते हैं गर्भ में, गर्भपात करा देते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं,
तो बड़ा भयानक काम है।
तो हरिवंश खास करके इसकी महिमा जैमिनी जी इसका जब मेंशन कर रहे हैं, हरिवंश जो है वो वैशंपायन महाभारत का खील भाग है। मैंने पहले बताया था आपको कि जनमेजय ने पूरे भरतवंश का वर्णन सुनने के पश्चात वैशंपायन से विनती किया कि आप मुझे अंधक ऋषि और भोजवंश की भी महिमा समझाइए, उसकी भी डिटेल्स बताइए। उस समय वैशंपायन ने श्री हरि जिस वंश में अवतरित हुए थे ऋषि वंश उसका, और साथ जो दूसरे अंधक और भोजवंश जो उनसे अफिलिएटेड था, ये तीनों वंश का उसमें वर्णन करते हैं, वो हरिवंश है। तो हरिवंश में श्री हरि की बहुत सारी अनगिनत कथाओं का वर्णन पाया जाता है, 12,000 श्लोक है टोटल। और हरिवंश का विशेष फल यह है कि कोई व्यक्ति यदि नहीं संतान है और विशेष रूप से यदि उसको पुत्र चाहिए तो हरिवंश का विधि पूर्वक श्रवण करने से निश्चित रूप से वो वैष्णव पुत्र प्राप्त करेगा और बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा, तेजस्वी पुत्र होगा। ऐसे हरिवंश की महिमा है। और वो तो भौतिक लाभ हुआ लेकिन उसका श्रवण करने से व्यक्ति निश्चित रूप से भगवद्धाम भी जाता है, इसलिए हरिवंश जो है वो वैष्णव पुराणों में उसका वर्णन, पुराण भी है और इतिहास भी। पुराण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो महाभारत का पूर्ण के रूप में उसको सप्लीमेंट करता है, लेकिन वास्तव में इतिहास इतिहास का भाग है, इसलिए उसको हरिवंश पुराण भी कहते हैं। तो महाभारत एवं हरिवंश की पुस्तक का पारायण पाठ शालग्राम शिला करने के पास करने से पुत्र एवं धन प्रसाद प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत की भी महिमा बता रहे यहां जैमिनी, हाँ नारद ने, श्रीमद् भागवत भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। वैसे श्रीमद् भागवत की विशेष महिमा है कि इससे वासुदेव के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। वो नष्ट प्रयास बुद्रेश नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम स्तो के भक्ति भगवती नहीं सीखी। भागवतम का नित्य श्रवण करने से, उसका नित्य सेवन करने से भगवान श्री हरि के चरण को में निष्ठा भक्ति प्राप्त होती, इसका नियमित रूप से श्रवण करने। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए भक्ति और मुक्ति तो बहुत सुलभ हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है। जिसको भक्ति प्राप्त है उसके लिए भक्ति और मुक्ति जो यहां बता रहे हैं, भोग और मोक्ष माने भक्ति और मुक्ति, वो दोनों उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, उसका कुछ विशेष महत्व नहीं रहता उसके लिए। तो भागवतम शुद्ध भक्ति देता है। यदि योग्य व्यक्ति के मुख से उसको श्रद्धा के साथ श्रवण किया जाए नित्य रूप से तो भागवतम सर्वश्रेष्ठ फल देता है। जो मनुष्य शालग्राम के सामने प्रसन्न मन से उस पुण्यमय पुराण का श्रवण करता है वो बहुत से लोगों को पवित्र कर देता है। जो भागवत होता है, भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक पुस्तक भागवत और दूसरा भागवत होता है जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का किसी और भागवत के मुख से श्रवण करता और इस प्रकार इस विधि से उसने निष्ठा भक्ति प्राप्त कर ली। तो ऐसा व्यक्ति जहां जहां जाता है, जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का भागवत अध्ययन करता है, पाठ करता है, श्रवण करता है, वो व्यक्ति जहां जहां जाता है जो लोग उसको देखते हैं उसको देखते मात्र से शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जिस जिस जगह जाते वो जगह शुद्ध हो जाती, इसलिए विदुर जी मैत्रेय को कहते हैं, मैत्रेय विदुर जी कहते हैं, विदुर को कहते हैं कि आप तो चलते फिरते तीर्थ स्थान, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ स्थान होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जहां जहां गए वो तीर्थ स्थान बना दिया, मंदिर खड़े कर दिए, तीर्थ स्थान बना दिया, ये चलते फिरते तीर्थ स्थान है। तो तीर्थ स्थान में यूजुअली क्या होता है कि हमें जाकर महास्नान करना होता है, उसका संग करना होता है, लेकिन भगवान के भक्त इतने दयालु होते हैं कि पापी लोगों का उद्धार करने के लिए कुछ खुद कष्ट लेते हैं, अपना जीवन उसमें समर्पित कर देते हैं लोगों के कल्याण के लिए। हम नहीं देखते हैं ये पेपर में क्या क्या आ रहा है, कभी कोई ज्वालामुखी फट रहा है, कभी कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी माओइस्ट ये लोग कितने 100 लोग मर गए, कितने लोग परिवार ग्रीफ ग्रीविंग शोक में पड़े हैं सब। तो भौतिक जगत की यह हालत है। तो भगवान का जो भक्त होता है तो इस प्रकार से लोगों का दुख नहीं देख पाता, इसलिए वो जगह जगह जाकर वो लोगों को ये समझाने का प्रयास करता है कि ये भौतिक जगत सुख के लिए नहीं बना है, ये दुखालय है, ये समझाता है। वो खुद कष्ट लेकर प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद कह रहा है वॉक थ्रू फायर टू एस्टैब्लिश दिस मूवमेंट, मैं अग्नि पर चला और अपना खून लगा दिया इस मूवमेंट को बनाने में। तो ये भागवत जो है चलता फिर स्थान, जो मनुष्य शालक राम के सामने प्रसन्न मन से उस पुण्यमय पुराण का श्रवण करता है तो बहुत से लोगों को पवित्र कर देता है। जिसके घर में सदा शालग्राम की मूर्ति वर्तमान रहती है वहां समस्त तीर्थ तथा सारे देवता औजग्य निवास करते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद्भागवतम जिस घर में रहता है, भागवत की महिमा ही पद्म पुराण में इसका वर्णन किया है अंतिम खंड में, श्रीमद्भागवतम जिस घर में रहता है वो घर तीर्थ स्थान के बराबर हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी के सुंदर तात्पर्य है भागवतम के ऊपर, वी हैव इनफ वर्क टू नीड फॉर अ लाइफ टाइम, इतने बड़े बड़े 18 वॉल्यूम है क्या चाहिए। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है, प्रभुपाद कहते कि माई पर्पस और माई ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी, ये मेरे दिव्य आनंद के प्रतीक है, ये मेरा दिव्य आनंद बना है मेरे तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी का जो सर्वोत्तम स्तर पर जो साक्षात्कार है वो अपने टीका में उन्होंने लिखा है। इससे बेहतर तो क्या हो सकता है, ब्रह्मांड में सबसे अच्छी गिफ्ट है ये। वी हैव द बेस्ट मंत्र महामंत्र, वी हैव द बेस्ट डायट या प्रसाद, वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट इसका, वी हैव द बेस्ट गुरु श्रील प्रभुपाद, वी हैव द बेस्ट स्क्रिप्चर श्रीमद भागवतम, एवरीथिंग बेस्ट वी हैव, सब कुछ श्रेष्ठ है हमारे पास इस संसार में, पूरी ब्रह्मांड में इतनी व्यवस्था सबके पास इतना सुलभ नहीं होता। चेतन महाप्रभु की कृपा से इतना सुलभ है हमारे पास, तो इसका लाभ उठा लेना चाहिए। इस संसार में प्राण त्याग के अवसर पर भी जिस पापी के भी मुख में शालग्राम शिला का चरणोदक डाल दिया जाता है, चरणोदक माने चरणामृत, जैसे यहां चरणामृत लगता है, वो परम गति को पा लेता है। मृत्यु के समय ही चरणामृत पिला देना चाहिए व्यक्ति को, अभी पता तो नहीं कि कब मरने वाला है, इसलिए जब कुछ तो पता चल जाता है, जब बीमार होता है आदमी, मेरे पिताजी कैसे किया था, सुबह ही मैंने हॉस्पिटल में आईसीयू में ही पिला दिया, डॉक्टर ने बोला था कुछ भरोसा नहीं कर चल बचेंगे, इसलिए आईसीयू में ही लेकर गया था मैं चरणामृत भगवान का, वही पिला दिया, भरोसा नहीं बात में अवसर मिला नहीं मिला, घर पे आकर भी जिंदा रहे थोड़ा तो फिर उनको वापस जो भगवान को पानी अर्पित करते हैं वो भी पिलाया तुलसी वाला, तो वो परम गति प्राप्त कर लेता। इस त्रिलोकी में नारायण सरीखा और कारण हितैषी बंधु, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं नारायण मुनि, इसलिए ग्रंथ भक्ति से भरा है पूरी तरह। इस त्रिलोकी में नारायण सरीखा और कारण हितैषी बंधु द्वादशी के समान पुण्यमय तिथि और विष्णु के चरणों के सदृश पवित्र तीर्थ कोई नहीं है। नवीन पल्लवों से सुशोभित तुलसी दर्शन से ही पापों का विनाश कर देती है। तुलसी जो है दर्शन मात्र से पापों का विनाश कर देती है, इसका वर्णन पद्म पुराण में दिया है, पद्म पुराण में तुलसी की महिमा है, फिर स्कंद पुराण में दिया है, ब्रह्मविद्या पुराण में भी तुलसी का इस भौतिक जगत में किस प्रकार से अवतरण हुआ आध्यात्मिक जगत से उसकी पूरी कथा का वर्णन किया और फिर उनकी महिमा का वर्णन किया। तो तुलसी के दर्शन मात्र से पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। शास्त्र में जितने भी ये सब विधान लिखे हैं वो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। समस्या यह है कि हम तुलसी का दर्शन करके पाप से मुक्त होने के बाद दूसरे नए पाप करते हैं, इसलिए हमारे संसार चक्र चलता रहता है, लेकिन जैसे शास्त्र में लिखा है वो तो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लंबी लंबी मंजरियों में भगवान केशव नित्य निवास करते हैं, कि जब मंजरी होती है ना उसमें केशव निवास करते हैं। इसलिए अर्जुन यदि पत्ते तुलसी के वृक्ष टूटकर गिर गए हो नीचे जमीन पर तो उन पत्तों से भी भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि जमीन पर गिर गया है तो तुलसी पत्र तो इसको भगवान की सेवा में उपयोग नहीं लाना चाहिए, मैं भी ऐसा समझता था ये पढ़ा उससे पहले, लेकिन यहां लिखा है साफ कि यदि तुलसी इतनी पवित्र है यदि वो जमीन पर गिर गई है फिर भी उसके भगवान की सेवा उसके भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार जो तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पाठ शालग्राम शिला की महिमा तो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता, अतः अब मैं देवलोक जाना चाहता हूं। नारद मुनि ने पूरी चंद्रहास की कथा सुना दी, शालग्राम शिला का महत्व सुना दिया। नारद किस प्रकार के ऋषि हैं? देवर्षि हैं, देवताओं के ऋषि, इसलिए देवलोक में रहते हैं अक्सर। वैसे वो ट्रैवलिंग करते रहते, कभी एक जगह अच्छे नहीं रहते हैं। बोलते कि मैं देवलोक जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर जब नारद जी चले गए तब अर्जुन को महान विस्मय हुआ। अर्जुन को इतना थ्रिल हो रहा था कि चंद्रहास की इतनी बढ़िया कथा सुनी। सुनिए जरा, सोचिए कि नारद मुनि से कथा सुनने का अवसर मिले। आप लोगों ने मुझसे सुना, मैं मत्स्य प्राणी हूं। यदि नारद मुनि से इस कथा का श्रवण करने का अवसर मिले तो कितना थ्रिल होगा, कितना एक्साइटमेंट आ जाएगा और कितनी शुद्धि हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने शालग्राम शिला की महिमा सुनी, इसलिए अर्जुन को महान विस्मय हो रहा और वे कहने लगे कि इस जगत में सत्पुरुषों की संगति के बिना मनुष्य को सुख की प्राप्ति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं होती नहीं है वास्तव में। अर्जुन यही इंगित करना चाहते हैं, सत्पुरुषों की संगति के बिना मनुष्य को वास्तविक सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जिस सुख के लिए जीवात्मा हमेशा तड़पता रहता है वो साधु संग से ही संभव है, क्योंकि साधु हरि कथा सुनाते हैं और उससे ही आत्मा सुप्रसिद्धि होता है। एक कवि कहते हैं कि इस संसार में दुर्जन और सज्जन, सज्जन यानी कि साधु पुरुष, दोनों ही पीड़ा देते हैं। आप बोलेंगे साधु पुरुष कैसे पीड़ा देता है? तो दुर्जन दर्शन मात्र से पीड़ा देता है। दुर्जन को कोई देख लेता है, चेहरा देख लेता है तो दुखी दुखी हो जाता है मन, तो दुर्जन व्यक्ति है। लेकिन कोई साधु पुरुष होता है तो जब बिछड़ जाता है तो दुख होता है ना। साधु पुरुष यदि कोई मिल जाए जो आपका आपको चाहने वाला है, आपका वेलविशर है, जो आपको हमेशा भगवान के संदेश सुनाता रहता है, आपके कल्याण के बारे में सोचता है, आपका सुरहुद है, ऐसा सज्जन, ऐसा साधु पुरुष आपके साथ आपको मिल जाए, आप उसके साथ संग करो, तो यदि हमारे थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ा सा भी हृदय यदि पाषाण जैसा नहीं है, पत्थर जैसा नहीं है, तो ऐसा जब सज्जन हमें छोड़कर चला जाता है, वियोग हो जाता है, तो कितना दुख होता है। इसलिए वो कभी कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन दोनों ही दुख देता है। सज्जन बिछड़ने पर दुख देता है, वो बिछड़ जाता है तो दुख हो जाता है। तो यह अर्जुन की भी यही हालत है, वो दुखी हो गया क्योंकि नारद मुनि को छोड़कर चले गए। लेकिन कह रहे हैं कि सत्पुरुषों की संगति के बिना मनुष्यों को सुख की प्राप्ति नहीं होती। जो कहते होंगे सभी साक्षी, अर्जुन सभी राजाओं के साथ आनंद पूर्वक चंद्रहास के कुंतलपुर की ओर चले, क्योंकि घोड़ा तो वहां गया है। नारद मुनि पहले ही बता दो कथा के प्रारंभ में। जैमिनी जी कहते हैं कि जन्मेजय फलश्रुति द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इतने दिन से हम ये कथा का श्रवण करें कुछ फायदा तो होना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इतिहासम इमं भक्तिया, मैं तुम्हें ही बता रहा था, हमेशा एक फलश्रुति में दो में से एक शब्द अवश्य होता है, एक तो श्रद्धया या तो भक्तिया, और दोनों का मोर ऑर लेस मीनिंग सेम होता है, क्योंकि भक्ति है वो भी डेवलपमेंट ऑफ फेथ है। भक्ति भी है जो श्रद्धा का, श्रद्धा जब परिपक्व हो जाती है उसको भक्ति कहते हैं। तो जैमिनी जी कहते हैं कि जन्मेजय, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस इतिहास को पढ़ता अथवा सुनता है, कौन सा इतिहास? चंद्रहास का, वो इस लोक में नाना प्रकार के भोग भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात उसको प्रेय और श्रेय दोनों की प्राप्ति हो जाती है। सोने पे सुहागा, उससे बेहतर तो क्या हो सकता है। कुछ लोग होते हैं बड़े कठोर होते हैं, कुछ कंप्लेन करते हैं कि प्रभु आप तो हमेशा फिलोसफी ठोकते रहते हो, करना पिलाते रहते हो हमेशा, तो मीठी बात कहते नहीं है। तो यार मीठी बात है, आप तो हमेशा सब कुछ त्याग देने की बात करते हो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। तो यहां जैमिनी जी बहुत कृपालु है, वो अपना आशीर्वाद दे रहा है कि जाओ बेटा तुम प्रेय भी प्राप्त करो, श्रेय भी प्राप्त करो, जैसे ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया। उन्होंने यही लोग इस संसार में ध्रुव तारा अभी भी है जो स्वर्ग से भी बढ़कर है, और इसके पश्चात वो वैकुंठ में जाने वाले हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद। तो उसी प्रकार का आशीर्वाद जैमिनी दे रहे हैं, और जैमिनी दे सकते हैं, उनको अधिकार है क्योंकि ये परम भक्त है। महाभागवत जैमिनी, जैमिनी का वास्तविक रूप आपको इसमें तो प्रकाशित होता ही है, लेकिन यदि आप भक्ति तो
पढ़ेंगे क्या नाम है इसका,
इसका जो वो है सप्लीमेंट है जैमिनी महाभारत का, बृहद भागवतामृत। यदि आप बृहद भागवतामृत पढ़ेंगे तो जैमिनी का और भी प्रकट रूप प्रकट होता है वहां। इसमें तो प्रकाशित हो ही रहा है, लेकिन उसमें उनका इनर मूड जो है भगवान के प्रति, उनका जो डिवोशन है भक्ति, जो वो ऐसे नदी की तरह बहता भागवत में, तो महान वैष्णव है महाभागवत जैमिनी। को ऐसे ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, ऐसे वैसे ऋषि नहीं है। ऋषि तो वैसे भी महान होते हैं, लेकिन कुछ ऋषि होते ऐसे होते हैं जो थोड़े दुनियावी होते हैं, इस संसार के होते हैं, आध्यात्मिक जगत में अधिक प्रवेश नहीं होता है। कुछ ऋषि ऐसे भी होते हैं, लेकिन जैमिनी ऐसे नहीं है। जैमिनी का गोवर वृंदावन तक पहुंचे होते वो भागवतम में प्रकाशित होता है। तो जब ऐसा महाभागवत कोई आशीर्वाद देता है तो आशीर्वचन कहता है, वो उनका विफल नहीं हो सकता, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो उन्होंने यहां हमें ये प्रॉमिस दी है कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक, कंडीशन क्या है, भक्तिपूर्वक, तोते की तरह नहीं, भक्तिपूर्वक, भक्तिपूर्वक माने जो भक्ति के विधि निषेध है उसको पालन करते हुए, और अपने दिल में श्री हरि के प्रति भक्ति होनी चाहिए, यांत्रिक रूप से नहीं। यांत्रिक रूप से करने का भी फायदा, लेकिन पूर्ण फल प्राप्त करना है तो भक्ति पूर्वक इस इतिहास को निरंतर पढ़ना सुनना चाहिए। यह फलश्रुति पहले चंडिका भी ले चुकी है चंद्रहास, पिछली बार में सुनाया। तो ऐसा व्यक्ति इस लोक में सुख होकर अंत में विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, अर्थात वापस भौतिक जगत में नहीं लौटता। तो ये नारद मुनि ऐसी कथा सुना करके देवलोक चले गए। अभी जन्मेजय को कौतूहल हो रहा है आगे की कथा में कि मुने क्या चंद्रहास ने उन दोनों घोड़ों को पकड़ लिया था क्या, ये बात तो क्लियर नहीं हुई अभी। तो मैंने जो पूछा आपसे उसका भलीभांति वर्णन कीजिए। तो जयमिनी आगे सुना रहे कि राजन प्रातः काल मकरध्वज और पद्माक्ष, मकरध्वज विषया का बेटा और पद्माक्ष चंपक मालिनी का बेटा, नगर के बाहर टहल रहे थे और उन्होंने ये दोनों घोड़े को जाते हुए देखा और वहां उनको पकड़ लिया, और फिर वो उसका संदेश, उन्होंने उसका स्वर्ण पत्र पढ़ा क्योंकि ये जो घोड़ा था उसके ऊपर एक नोट लिखा था, एक स्वर्ण पत्र लिखा था कि अश्वमेध यज्ञ करने के उद्देश्य से ये घोड़ा इस प्रकार से टहल रहा है सब जगह, और जिसकी भी शक्ति हो इसको पकड़ ले और उसको युद्ध के लिए न्योता दिया जाता है, ऐसा कुछ मैसेज लिखा था। तो चैलेंज था, ये चुनौती थी। तो स्वर्ण पत्र के अभिप्राय को ये दोनों चंद्रहास के बेटे समझ गए और उन्होंने चंद्रहास को संदेश सुनाया, और चंद्रहास को जब ये पता चला कि ये दोनों घोड़ों को लेकर अर्जुन यहां आए हुए हैं और साथ में केशव भी है, तो चंद्रहास की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही, उसको परम हर्ष प्राप्त हुआ क्योंकि चंद्रहास बचपन से श्री हरि की सेवा करते आ रहे हैं, उनकी भक्ति करते आ रहे हैं। तो सोचने लगे कि अब तो अवश्य श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा क्योंकि अर्जुन अपने घोड़ों के साथ यहां घूम रहे हैं, तो साथ में केशव तो होंगे ही होंगे क्योंकि जहां जहां अर्जुन होता है वहां श्री कृष्ण होते हैं। तो बचपन से मैंने जिन भगवान केशव का सदा ध्यान किया है वे केशव अर्जुन के साथ साथ निश्चय ही यहां आएंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने मकरध्वज से कहा कि इन घोड़ों को तुम अपने पास रखो एक महीने के लिए, क्योंकि ये लोग एक साल से इसकी रक्षा करते आ रहे अश्वमेध यज्ञ करने के उद्देश्य से, और वास्तव में चंद्रहास चाहते थे वो युद्ध चाहते थे, उसका कारण बताता हूं। तो वो ऐसा चाहता कि युधिष्ठिर महाराज का ये यज्ञ विफल हो जाए, इसलिए मकरध्वज को बताया कि तुम ये घोड़े को पकड़ो एक महीने के पास अपनी कस्टडी में रखो अपने पास, और फिर जब उनकी एक साल की अवधि समाप्त हो जाएगी तो उनका यज्ञ विफल हो गया क्योंकि ये यज्ञ एक साल के अंदर हो जाना चाहिए, तो एक साल के बाद यदि, क्योंकि एक महीने के बाद एक साल खत्म होने वाला हो, इसलिए एक महीने के बाद देंगे तो वो यज्ञ कर नहीं पाएंगे तो विफल हो जाएगा। वो ऐसा करना इस प्रकार इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो अर्जुन के साथ युद्ध करके श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते थे, क्योंकि भगवान इसमें बहुत सारी कथाओं का संवर्णन पहले भी किया, कि भगवान जो है एक उनका आनंद होता है कि जब शौर्य शौर्य रस होता है ना, जब दो योद्धा जब दो अपने भक्त युद्ध करते हैं तो उसमें भी भगवान आनंद उठाते हैं। जैसे हम कई बार एक्शन मूवीज देखने नहीं जाते, अमिताभ बच्चन तो बहुत पुराना हो गया है, जैसे कुछ लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज है ना, तो कहते एक्शन देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे अंदर भाव कहां से आया, क्योंकि भगवान के अंदर ये भाव है इसलिए हमारे अंदर भी भाव है, तो भगवान भी ऐसा शौर्य रस देखना चाहते हैं। इसलिए कई बार ये वैष्णव लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करके श्रीहरि को संतुष्ट करते हैं। तो चंद्रहास ने अपने बेटों को इस प्रकार से आ गया, देखिए तुम एक महीने के इसको पकड़ता रखो, मैं हमारे घोड़े से और यज्ञ से हमारे कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो श्रीहरि का दर्शन करना चाहता हूं और अर्जुन के साथ युद्ध करके उनको प्रसन्न करना चाहता हूं। तो श्रीहरि को प्रसन्न करना यही एकमात्र उद्देश्य था। तो मकरध्वज ने ऐसा ही किया कि घोड़े की रक्षा करने के लिए उसके पास चला, घोड़ों को पकड़ लिया और चंद्रहास भी अपने सैनिकों के साथ आकर वहां बाहर आकर डटकर खड़े हो गए। उस समय श्री कृष्ण साथी के रूप में ही थे, जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि थे उसी प्रकार से यहां अर्जुन रथ पर विराजमान थे और श्री कृष्ण उनके साथ के रूप में थे, वहां विराजमान थे और उन्होंने वहां चंद्रहास को खड़ा देखा, खड़ा हुआ वहां पाया। तो अर्जुन ने देखा कि चंद्रहास के शरीर पर शंख और चक्र से के जो चिन्ह थे वो अंकित थे, शंख और चक्र के चिन्ह अंकित थे और ललाट पर उज्ज्वल कुंड तिलक सुशोभित हो रहा था, वैष्णव तिलक है। यह बहुत पोएटिक डिस्क्रिप्शन दिया है। श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो तुलसी अर्पित की गई थी उससे उनका सिर सुशोभित हो रहा था, उसके उन्होंने अपने सिर को धारण किया था, किसने, चंद्रहास ने, ऐसे तुलसी पत्र। वे अवस्था तप और ज्ञान में वृद्ध थे लेकिन नव युवक की तरह वहां युद्ध भूमि में खड़े थे, जैसे उनको देखकर लगता था नव युवक है, ऐसे दाढ़ी मूछ में आ गया सफेद हो गया, लेकिन उनका जो जोश था वो नव युवक की तरह था। उसको देखकर अर्जुन प्रसन्न हो गया क्योंकि अर्जुन अभी अभी तो चंद्रहास की कथा सुनकर आया, इसलिए चंद्रहास के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई अर्जुन के दिल में। तो कह रहे कि जो बाल्यावस्था से विष्णु भक्ति में तत्पर रहते हैं ऐसे चंद्रहास को देखकर हमारा पूरा कुल पवित्र हो गया, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो फिर चंद्रहास को देखकर भगवान ने भी अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण प्रकट कर लिया, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, भगवान के दो हाथ में शंख और चक्र फिर गदा पद्म, इसमें जो चक्र और गदा जो है वो दो आयुध है जो पापियों को दंडित करने के लिए और जो वैष्णव द्रोही है जो वैष्णव को पीड़ा देते हैं देवताओं को पीड़ा देते हैं ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए क्या है, गदा और चक्र, और दूसरे दो हाथ में उनके शंख और पद्म है, इन दोनों से वो वैष्णवों को और देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज की कथा में आता है कि जब उनसे प्रसन्न हो गए भगवान ध्रुव से और उनके सामने प्रकट हुए तो उनके हाथ में जो शंख था वो उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर स्पर्श किया और उससे उनको आशीर्वाद दिया। तो श्री कृष्ण ने नारायण का रूप प्रकट करके शंख चक्र गदा वाला जो उनका रूप था वो उससे सुशोभित होने लगे, वो रूप प्रकट किया और जिस जगह वो रथ पर बैठे थे उसी आसन पर बैठक पर खड़े हो गए और कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर चंद्रहास आनंद विभोर हो गया, परमानंद में निमग्न हो गया, वो सीधा जाकर श्री हरि के चरणों में गिरकर उनका अभिवादन करने लगा और अपने आंखों से अश्रु से उनके चरण का अभिषेक कर दिया भगवान के चरणों का। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने ही चंद्रहास को उठाकर उसको बड़ा गौर आलिंगन किया। तो पुनः श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो पार्थ तुम भी उठो और तुम भी चंद्रहास का आलिंगन करो, ये ध्रुव के समान मेरे प्यारे भक्त है। तो उस समय अर्जुन को थोड़ा सा विस्मय हुआ क्योंकि जब पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब भीष्मदेव सामने खड़े थे उस समय भगवान ने अर्जुन को भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, और कहा था जो यहाँ भगवद गीता से यहाँ जैमिनी कोट करते हैं कि पराय धर्म से अपना धर्म यदि गुणहीन हो फिर भी उसका ही पालन करना चाहिए। ऐसा कह के भगवान आपने मुझे युद्ध में प्रेरित किया था, युद्ध में प्रवृत्त किया था, और अभी आप कह रहे हो कि ये सामने युद्ध के लिए उद्देश्य से खड़ा और इसका आलिंगन करो, ये बात को समझ में नहीं आई। हाँ वो वृद्ध है तो उस कारण से मैं उनका चरण स्पर्श कर लेता हूं, क्योंकि डेफिनेटली अर्जुन के मन में चंद्रहास के प्रति पूज्य भाव है, लेकिन अर्जुन को वो बात की स्मृति हुई कि मेरे लिए तो भीष्मदेव भी उतने ही पूज्य थे, लेकिन फिर भी उस समय तो भगवान ने मुझे युद्ध में लगाया था और अभी भी युद्ध का अवसर उपस्थित है, इसलिए मेरा कर्तव्य कदाचित यह है कि मैं उनके साथ युद्ध करूं, इसलिए उनके मन में शंका हुई और भगवान से पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त, ये सुनिए, ये सभी विधान का भी विधान का निचोड़ भगवान कह रहे हैं यहां दो ही श्लोक में अर्जुन को सुना रहे हैं कि पृथानंद मेरे भक्त को नमस्कार करना चाहिए और विशेष रूप से उसका आलिंगन करना चाहिए, क्योंकि कपिला गौ के दान से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल मनुष्य विष्णु भक्त का आलिंगन करने से पा लेता है। मेरे भक्तों से जो प्रेम किया जाता है वही सर्वोत्तम धर्म है। धर्म की व्याख्या दे दी भगवान एक ही सेंटेंस में, मद्भक्तेषु चया प्रीति सधर्म परिकीर्तितः, मेरे भक्तों के साथ जो प्रीति की जाती है वही सर्वोत्तम धर्म है, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम विष्णु के इन विष्णु के प्यारे भक्त चंद्रहास का आलिंगन करो। तो जैमिनी कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर अर्जुन को बड़ा संतोष हो गया, इसलिए उन्होंने पहले पूज्य भाव से चंद्रहास का चरण स्पर्श करके उनका बड़े प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और उनके सामने नम्रता पूर्वक खड़े हो गए, क्योंकि उनके आयु में वृद्ध है उनसे। तो उस समय चंद्रहास ने कहा कि पांडु नंदन, मैं तो यहाँ युद्ध के लिए खड़ा था, तुम्हारे दोनों घोड़े मैंने ले लिए थे, ये उद्देश्य था कि तुम्हारा यज्ञ में विफल कर दूंगा, लेकिन ये श्रीहरि के उत्तम वचनों से सुनकर हम में और आप में मित्रता स्थापित हो गई है, इसलिए मेरा इन घोड़ों को अपने पास रखने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए आज हम दोनों को मिलकर ये श्री केशव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो दोनों इस प्रकार से बात कर ही रहे थे कि उसी समय मकरध्वज जो है दोनों घोड़ों को लेकर वहां आ गया और उसने श्री कृष्ण और अर्जुन का दर्शन किया, दोनों को प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रद्युम्न आदि वीर जो थे जो श्री कृष्ण के बेटे, उन्होंने भी चंद्रहास का सम्मान किया, सत्कार किया, और चंद्रहास सुंदर वाणी द्वारा, वैष्णव होता है उसके 26 गुण होते हैं, उसमें से गुण होता है वो बड़ा निपुण कवि होता है, शुद्ध भक्त होता है वो कवि होता है, अच्छा कवि होता है, वो भगवान का सरल बलि भाति कर सकता है। तो चंद्रहास भी बहुत अच्छा कवि था, उन्होंने उत्तम श्लोकों के द्वारा, उत्तम वाणी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की और उनको प्रसन्न किया। उसके पश्चात जैमिनी कह रहे हैं कि चंद्रहास बड़े आनंद पूर्वक समारोह करके वहां अर्जुन और श्री कृष्ण को और उनके साथ जो दूसरे भी जो राजा आए हुए थे उन सबको लेकर अपने नगर में गए, और जिस प्रकार से इंद्र सुशोभित होते हैं उसी प्रकार से चंद्रहास वहां श्री कृष्ण का संग पाने से सुशोभित हो गए। और यहां बहुत अच्छी बात बताई है कि चंद्रहास के प्रभाव से, उसके अनुग्रह से और चंद्रहास के आश्रय से उसकी पूरी जनता है, जो जनता जो थी वो कृष्ण परायण हो गई, पूरा उसका जो राज्य था वो वैष्णव राज्य हो गया। सोचिए, मतलब जिस राज्य में यदि सभी जन वैष्णव है, वो पूरा जनपद वैष्णव है, तो वैकुंठ के समान है, वही वैकुंठ है। तो चंद्रहास के प्रभाव से पूरी जनता कृष्ण परायण हो गई थी और उन्हें विष्णु भक्त चंद्रहास के अनुग्रह से दुष्ट बुद्धि, जो इतना दुष्ट बुद्धि वाला था, वो भी मदन सहित भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त कर लिया। दुष्ट बुद्धि ने वैष्णव द्रोह में कौन सी कमी छोड़ी, तो दुष्ट बुद्धि का इस प्रकार से उसकी उद्भवगति कैसे, उसको परम पद कैसे प्राप्त हुआ, एक ही उसका उपाय था कि चंद्रहास ने उसको क्षमा करके उसके ऊपर कृपा बरसाई और दुष्ट बुद्धि ने अंत में चंद्रहास की जो कृपा थी उसको स्वीकार किया, है ना। अंत में तो वो जब उसका बेटा मदन मर गया तो उसने पश्चाताप किया था और अपने आप को कोसा था, तो उस समय क्योंकि उसने जो चंद्रहास के प्रति जो विद्रोह किया था, उसका जो अपराध किया था, उसके लिए प्रायश्चित कर लिया था और चंद्रहास के अनुग्रह से उसको परम पद की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद वहां चंद्रहास के जो पुरोहित थे गालों में उनको बुला, चंद्रहास ने उनको बुलाकर श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए कहा। उस समय गालव मुनि परमानंद में निमग्न हो गए और श्री हरि के पास आकर उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया, उनकी पूजा की और मन ही मन उनके चरण के ध्यान करके उसमें निमग्न, जैसे समाधिग्रस्त हो गए। इस प्रकार वहां श्री कृष्ण की पूजा हुई और वहां 3 दिन 3 रात रहे और फिर गालव मुनि की आज्ञा लेकर वहां से फिर आगे निकले। उस समय जब श्री कृष्ण वहां से जा रहे थे, उस समय चंद्रहास ने अपना पूरा राज्य, मुझे राज्य पूरा राज्य को जितना भी धन था सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, ये सब आपका, जैसे बतिंद्र ठाकुर कहते हैं, बाण सो देहो विहो जो किछु मोर अर्पिता अर्पित हुआ पते नंद किछु, सब कुछ जो भी कुछ मेरा है वो आपको समर्पित कर देता। उसी प्रकार से चंद्रहास ने अपना पूरा राज्य, अपना धन बंधन सब श्री हरि को समर्पित कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने वो पूरा जो राज्य था वो अर्जुन की आज्ञा लेकर चंद्रहास के पुत्र मकरध्वज को दे दिया, क्योंकि भगवान जानते थे कि अभी चंद्रहास यहां रहने वाला नहीं है, इसलिए वो पूरा राज्य के बाद मकरध्वज को प्रदान कर दिया। और फिर चंद्रहास जो थे वो भगवान के प्रति उन्होंने पुत्र से कहा कि अभी मैं वृद्ध हो चुका हूं, वैसे मेरा अभी निवृत्त होने का समय आ गया है, मेरा टाइम है कि अभी मैं सन्यास ग्रहण कर लूं। तो वो तब अपना राज्य मकरध्वज को देकर फिर अर्जुन के साथ बोल दिए, यहां श्री कृष्ण साथ में थे तो उनके रक्षा, घोड़े की रक्षा करते हुए श्री कृष्ण के साथ बोलिए वहां से चल दिए। तो ये कथा यहां समाप्त होती है। इस कथा का फिर से यहां पर चित्र बताया, जैमिनी कहते हैं जो मनुष्य चंद्रहास के इस संपूर्ण चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसे बल आयु, उसके बल आयु पता प्रदा उसको प्राप्त होगी तथा सदाचारी दाता एवं विष्णु भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन कैसे होंगे, वो पुत्र विष्णु भक्त होंगे और विष्णु भक्त पुत्र प्राप्त होने से क्या होता है, पाप का कल्याण हो जाता है, उसको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, उसके जो पूर्वज होते हैं उसको भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है यदि पुत्र शुद्ध वैष्णव बन गया। तो चंद्रहास की कथा श्रवण करने का ये फल है कि उसे विष्णु भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। अंत समय में और जो व्यक्ति ये कथा का नियमित रूप से श्रवण करता है, उसका अध्ययन करता है, अंत समय में उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे भगवान वासुदेव भवसागर से उसका उद्धार कर देंगे। मृत्यु का समय बड़ा कठिन होता है, मृत्यु के समय हम जैसा चिंतन करते हैं, जिस प्रकार का विचार कर उसी प्रकार से हमारी गति होती है, और उस समय भगवान के ऊपर ध्यान करना बहुत बहुत कठिन होता है, साधारण मनुष्य के लिए तो असंभव होता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का श्रवण करता है, भगवान को बहुत सारे भक्तों का कथाओं का वर्णन जैसे महाभारत भागवत में किया, तो इस कथा की श्रवण, कथा का श्रवण नियमित रूप से करने से भगवान वासुदेव भूसागर से उसका सदा के लिए उद्धार कर देंगे, उसका पुनः इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो बहुत ये कथा इतनी रुचिकर है कि इसमें कभी बोरिंग नहीं लगता है, है ना, कभी बोरिंग तो नहीं लगा ये पूरी कथा में। एक तो ये कथा इतनी रुचिकर है और फिर उसका फल इतना महान है, तो क्यों नहीं करें। इसलिए ये कथा का हमें नियमित रूप से श्रवण करके चंद्रहास से प्रेरणा लेनी है कि श्री हरि की शरणागति पूरी तरह से कैसे लेनी है। उनके चरित्र में हमने बलिपाद इसका वर्णन किया कि पूर्ण शरणागति लेनी है उन्होंने, हरे कृष्ण। तो ये कथा हम यहां समाप्त करते हैं चंद्रहास की, और अगले रविवार से अभी हम वैशंपायन महाभारत कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आदि पर्व समाप्त कर चुके हैं और अभी नेक्स्ट होगा सभा पर्व, जिसमें विविध प्रकार के देवताओं की सभा का अद्भुत वर्णन मिलेगा। तो अगले रविवार से हम सभा पर्व कंटिन्यू करेंगे वैशंपायन महाभारत के अंतर्गत। हरे कृष्ण। महर्षि जैमिनी की, महाभारत ग्रंथ की, श्री प्रभुपाद की।